नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। कल सुबह तीसरे चरण का मतदान होना है। 93 सीटों पर इस बार वोट डाले जाएंगे और इस बार की खास बात यह है कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार का मामला पुरजोर तरीके से उठा है। आज भी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश कर दी है उपराज्यपाल ने। और साथ साथ इस बीच में झारखंड का एक मामला उठा। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले ही जेल में है हेमंत सोरेन, और आज उनके करीबी सहयोगी जो कांग्रेस के बड़े नेता है स्टेट के, उनके घर छापेमारी हुई, ED की छापेमारी हुई। बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ है। कह रहे हैं कि 30 करोड़ के आसपास की गिनती अब तक हो चुकी है और अधिक कैश अभी भी मिलने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी वहां मौजूद हैं। आपको बता दें, इस बीच झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में नोटों का जो पहाड़ पकड़ा गया है वो झारखंड की JMM सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर के घर हुई ईडी की कार्रवाई से पकड़ा गया है। 25 करोड़ रुपए कैश बरामद अब तक कर लिए गए हैं। 70 साल के आलमगीर आलम झारखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विपक्ष इस बरामदगी को उनसे ही जोड़कर देख रहा है। ईडी की टीम ने आज रांची में कई जगह पर छापे मारे। जब संजीव लाल के नौकर के घर छापा पड़ा तो ईडी के अधिकारी इतना कैश देखकर दंग रह गए। इतना पैसा गिनने के लिए बैंक से पैसा गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। दरअसल ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के एक चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सिलसिले में ये छापे मारे थे। वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर कुछ योजनाओं में धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। आज के छापे के बाद आलमगीर आलम को जब BJP ने निशाना बनाया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि जांच एजेंसी की जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी हैं और मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। इससे पहले वो दो पूर्व मंत्रियों का भी सेक्रेटरी रह चुका है। आपको याद दिला दें कि ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन झारखंड में वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल के यहाँ मनरेगा फंड्स में धांधली के आरोपों में छापा पड़ा था जिसमें 36 करोड़ रुपए कैश उस वक्त बरामद किए गए थे। तब भी BJP ने उसे सरकार से जोड़ा था। आज ईडी की कार्रवाई के बाद नोटों की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ये मुद्दा उठाया। उधर आलमगीर आलम अपनी सफाई देने में लगे रहे।
ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश TV पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था।
संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा PS है और हम लोग भी जब भी PSUS सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का PS रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। TV में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ED का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा।
कल झारखंड के मंत्री के यहाँ से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहाँ से 51 करोड़ रुपया मिला।
तो एन लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह नोटों का पहाड़ कहीं मिलेगा तो आरोपों का पहाड़ तो बनना तय है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 13 मई से 1 जून के बीच अलग अलग चार चरणों में मतदान होने वाला है। खैर, कल तीसरे दौर का मतदान है जिसके लिए तैयारियां चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी हो चुकी हैं। सभी पोलिंग पार्टियां सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। कई जगहों पर संवेदनशील इलाकों में पोलिंग बूथ भी बने, वहां सुरक्षा बलों को कड़ी मुस्तैदी के साथ लगाया गया है। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में ईवीएम वहां पहुंच गई हैं, वीवीपैट मशीनें वहां पहुंच गई हैं, अन्य उपकरण लेकर भी चुनाव कर्मी वहां पर पहुंचते जा रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये असम के गुवाहाटी और धुबरी की हैं। असम की 4 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। कल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन अब मतदान 93 सीटों पर ही होगा क्योंकि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए थे और इसलिए मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। उनको विजयी सर्टिफिकेट भी वहां से मिल गया है, इसीलिए इस फेज में अब 94 नहीं 93 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और कल का जब मतदान पूरा होगा तीसरे चरण का, तो आप कह सकते हैं कि 50% सीटों पर लगभग मतदान पूरा हो जाएगा। 543 में से 283 सीटों पर मतदान का काम कल के मतदान के बाद पूरा हो जाएगा। तीसरे दौर में जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उसमें गुजरात की सभी सीटें शामिल हैं। सूरत पर बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। कर्नाटक की भी बाकी बची 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। आपको बता दें कर्नाटक में 14 पर मतदान हो चुका है और कर्नाटक में इस वक्त मामला काफी गरमाया हुआ है। HD रेवन्ना के कथित सेक्स जो वीडियो सामने आए हैं उसके बाद से। कल ही मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर कल मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटों पर कल ही मतदान होना है। इसके अलावा बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 और बंगाल की 4 सीटों पर भी कल मतदान होना है। तीसरे चरण की जिन 93 सीटों पर कल मतदान होना है उसमें बीजेपी का बहुत कुछ इस बार दांव पर लगा है। आप ये कह सकते हैं कि ये तीसरे चरण का जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा वाला चुनाव है। बीजेपी ने पिछले साल 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें 71 सीटें जीती थी इन 93 में से। एनडीए को कुल 78 सीटें मिली थी, यानी आप एक तरीके से मान सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट था बीजेपी का और एनडीए का। विपक्षी गठबंधन को महज 12 लोकसभा सीटें मिली थी और कांग्रेस को इनमें सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। इस लिहाज से बीजेपी को कल के चुनाव में अपने पुराने प्रदर्शन को हर हाल में दोहराना होगा अगर उसको 370 के लक्ष्य को पाना है। विपक्ष के लिए भी इस दौर में काफी कुछ मौका छिपा हुआ है। अगर विपक्ष 93 सीटों में बीजेपी के नुकसान पहुंचा सकता है, बीजेपी के रथ को रोक सकता है, तो बीजेपी की गाड़ी 370 के उस कथित मिशन 370 को पूरा नहीं कर पाएगी जिसका नारा प्रधानमंत्री ने दिया था। कल लोकसभा चुनाव के दौरान में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई है, जो बीजेपी के किले कहे जा सकते हैं। यहां बीजेपी ने बीते कई साल की लगातार मेहनत से अपनी बहुत ठोस जगह बना रखी है। इन किलों में सेंध लगाना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कल सामने आने वाला है। जैसे गुजरात की सभी 25 की 25 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती। यहां गुजरात सूरत की सीट बीजेपी पहले ही हासिल कर चुकी है, इसीलिए मैं 26 नहीं बोल रहा हूं, 25 बोल रहा हूं, और बाकी 24 सीटों पर उसकी नजर अब बनी हुई है। कर्नाटक में बीजेपी ने वो सभी 14 सीटें पिछली बार हासिल की थी जहां पर कल मतदान होना है, यानी कर्नाटक में कल सारी बीजेपी की सीटें दांव पर लगी हैं। कर्नाटक में हाल ही में सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार चुनाव हारी है विधानसभा में, वहां कांग्रेस की सरकार बन गई है। और इस बीच में जैसा कि हमने बताया, सांसद HD प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना का जो मामला चल रहा है वो और गंभीर मामला इस वक्त अश्लील टेप कांड का चल रहा है, जो बीजेपी के लिए कठिन चुनौती बनकर आया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश भी है, तीसरा राज्य जहां पे कठिन परीक्षा है। 10 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। बीजेपी की इन सभी सीटों को फिर से जीतना जरूरी होगा और इसमें वो सीटें भी हैं जो यादव बेल्ट की सीटें कही जाती हैं, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। यहां तक कि कन्नौज की सीट जो कि मुलायम सिंह यादव की सीट कही जाती थी, उस सीट पर भी बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव पिछली बार हरा दिया था। गुजरात बीजेपी का गढ़ है। गुजरात में कल एक साथ सभी सीटों पर मतदान होना है। कल गृहमंत्री अमित शाह की किस्मत का फैसला भी तय हो जाएगा। गुजरात का क्या चुनावी माहौल है, आइए देखते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया की ये जमीनी रिपोर्ट।
देश में तीसरे चरण के लिए लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। इसकी 93 लोकसभा सीटों में से गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 26 में से एक लोकसभा सीट जो कि सूरत की है, वो निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल वहां से निर्वाचित हो चुके हैं। इस तरह से अब 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 25 लोकसभा सीटों में कुछ वीआईपी सीट भी हैं। उसमें गुजरात की गांधीनगर सीट है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में है। वहीं राजकोट से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया पोरबंदर से चुनाव मैदान में है। इन 25 लोकसभा सीटों पर कल जब मतदान होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में अपना मतदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो गुजरात की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर बीजेपी ने तकरीबन 5,00,000 वोटों से जीतने का टारगेट अपने पास रखा है। गुजरात में क्षत्रियों की नाराजगी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसका सीधा असर बताया जा रहा है 5 से 6 लोकसभा सीटों पर है। हालांकि ईवीएम में जब मतदान हो जाएगा, ईवीएम सील हो जाएंगे, तो उसके बाद 4 जून को इसके नतीजे आएंगे, तभी ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है या नहीं। लेकिन देश की बाकी राज्यों की लोकसभा सीटों पर भी मतदान है और वहाँ पर भी देश दुनिया की नज़र जमी हुई है।
और अब देखते हैं कि तीसरे दौर की 93 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी सबसे अधिक 93 में से 81 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस 93 में से 68 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। बीएसपी 79 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। समाजवादी पार्टी इस दौर में यूपी की सभी 10 सीटों पर मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस भी 6 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे 5 सीटों पर लड़ रही है और एनसीपी शरद पवार 3 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं तीसरे चरण में कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होने वाला है और कौन कौन से कड़े मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह जो गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल असम के धुबरी से चुनावी मैदान में है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात के पोरबंदर से चुनावी मैदान में है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश की अपनी परंपरागत सीट गुना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्यप्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल उनकी भी किस्मत तय होगा कि वो दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ आगे जाकर करने वाले हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक बार फिर महाराष्ट्र के बारामती सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वो एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां उन्हें अपनी भाभी सुनेत्रा पवार से चुनौती मिली है। सुनेत्रा पवार अजीत पवार की धर्मपत्नी है और अजीत पवार ने असली एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार के पास चला गया है। बीजेपी नेता नारायण राणे महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव सपा की परंपरागत सीट मैनपुरी से इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो कन्नौज से हार गई थी, उसके बाद मैनपुरी का उपचुनाव हुआ था मुलायम सिंह के देहांत के बाद, उसको उन्होंने जीता। मैनपुरी की वो सिटिंग सांसद हैं, मैनपुरी से इस बार किस्मत आजमा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल एक बार फिर आगरा की सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की एक और वरिष्ठ नेता सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से उम्मीदवार हैं और उनकी सीट पर भी कल ही मतदान होना है। कल जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें से महाराष्ट्र की बारामती सीट तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त चर्चा में और दिलचस्प हो चुकी है। यहां पर पवार परिवार बनाम पवार परिवार की लड़ाई देखने को मिल रही है। बारामती सीट शरद पवार की सीट रही। शरद पवार ने जब बारामती छोड़ी तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले के छोड़ी। सुप्रिया सुले यहाँ से सांसद हैं लगातार। अब दो महिला सदस्य इस परिवार के आमने सामने हैं। भाभी का मुकाबला ननद से होने जा रहा है। बारामती से इस मुकाबले पर मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं।
तीसरे चरण में महाराष्ट्र में कुल 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इन 11 सीटों में से 7 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की है, जिन्हें की शुगर बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर चीनी उत्पादन होता है, गन्ने की खेती होती है और ये महाराष्ट्र के कई राजनेताओं का गढ़ रहा है, खास करके कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों का ये इलाका गढ़ रहा है। इसके अलावा 2 सीटें मराठवाड़ा की हैं और 2 सीटें हैं कोंकण इलाके की और इन पूरी 11 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर की सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मुकाबला बारामती की सीट पर हो रहा है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां मुकाबला है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच में। इस बारामती सीट के अलावा जो अगली सीट जिस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं वो सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, जहां पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारा है। उनके सामने है शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से विनायक राउत, जो कि 2 बार से उस सीट पर सांसद चुने गए हैं। तीसरी अहम सीट है सोलापुर की सीट, जहां से प्रणति शिंदे कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। प्रणति शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। इससे पहले 2 बार सुशील कुमार शिंदे ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ा था, 2014 में और 2019 में, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2009 में वो यहाँ से सांसद चुने गए थे। तो उनके सामने बीजेपी के राम सातपुते, प्रणति शिंदे के सामने बीजेपी के राम सातपुते चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो मौजूदा सांसद थे यहाँ के, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था। तो देखना होगा कि आखिर ये चुनाव नतीजे किस तरह के परिणाम सामने लाते हैं।
महाराष्ट्र के तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में उस जगह भी वोट डाले जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की या देश की शुगर बेल्ट जिसको कहा जा सकता है। उन 4 दशकों से इस इलाके में शरद पवार का दबदबा रहा है। इस शुगर बेल्ट पर पूरी तरीके से शरद पवार जो कहते हैं उसी तरह की राजनीति यहां पर देखने को मिलती आई है। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदले हैं। तमाम 2 बड़ी पार्टियां आपस में टूट चुकी हैं, शिवसेना और एनसीपी। उसके बाद अब सबकी नजर एक क्षेत्र में टिकी हुई है कि कल वहां पर मतदान में क्या होने वाला है। चुनाव नतीजों से पता चलेगा, लेकिन इस शुगर बेल्ट की क्या वस्तु स्थिति है, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित।
लहलहाते गन्ने के खेत, देश में सबसे ज्यादा चीनी इसी इलाके में बनती है। आम लोगों का घर भी गन्नों की खेती से चलता है, तो नेताओं की राजनीति भी। वैसे पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ रहा है। राज्य के 19 में से 5 मुख्यमंत्री यहीं से बने हैं। यहाँ की सहकारी चीनी मिलें सियासी ताकत का एक स्रोत रही हैं, क्योंकि शरद पवार ने सहकारिता आंदोलन के शुरुआती दिनों में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई, इसलिए लंबे समय तक उनका सहकारिता क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। लेकिन बीते 5 सालों में काफी कुछ बदल गया है। शरद पवार के खासम खास लोग अब उनके साथ नहीं हैं। इस क्षेत्र में कुल 10 सीटें हैं, पुणे, मावल, शिरूर, बारामती, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, माढ़ा और हाथकांगले। पिछले चुनाव में महायुति यहां से सिर्फ 4 सीट ही जीत सकी थी। इस इलाके के ज्यादातर विधायक किसी न किसी सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष या सदस्य हैं। अजीत पवार की चाचा शरद पवार से बगावत के बाद कई सहकारी चीनी मिलों के पदाधिकारी अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। इलाके के बड़े राजनीतिक चेहरे हर्षवर्धन पाटिल, मोहिते पाटिल का परिवार और विखे पाटिल का परिवार कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे में चले गए हैं। सहकारिता क्षेत्र की ताकत के मद्देनजर मोदी सरकार ने 2021 में सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय बनाया था, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। सरकार गन्ना किसानों का साथ हासिल करने के लिए भी कई नीतियां बना रही है।
30 साल तक हमारे इनकम टैक्स का डिसीजन नहीं हो पा रहा था, अभी वो डिसीजन हुआ और आगे आने वाले कुछ सालों तक मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, तो ऐसे डिसीजन हो रहे।
शुगर बेल्ट की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बारामती की है,
जहां मुकाबला पवार परिवार के ही दो सदस्यों के बीच है। तीन बार से सांसद सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं।
सहकारी चीनी मिलें महाराष्ट्र में कई राजनेताओं के करियर में मिठास घोल चुकी है। चीनी मिलों पर वर्चस्व की वजह से जो आर्थिक ताकत मिली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनेताओं के वारे न्यारे भी हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण बदला है उसकी वजह से देखना दिलचस्प होगा कि चीनी इस बार किसके लिए मीठी साबित होती है और किसके लिए कड़वी। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और मेरे कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ मैं रौनक कुकड़े एनडीटीवी इंडिया के लिए।
अब सवाल यह है कि तीसरे दौर में जनता वोट देने के लिए कितना निकलेगी, क्योंकि पहले दो दौर के मतदान में वोट प्रतिशत कम पड़ा है, जनता में उदासीनता देखी गई है। 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव पहले दो चरणों में हम कह सकते हैं काफी ज्यादा वोटिंग कम होने की वजह से सुर्खियों में रहा है। चुनाव आयोग ने लोगों को, मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कई कदमों की घोषणा की है ताकि इस कड़ी गर्मी से, धूप से, लू से आम वोटर को बचाया जा सके। हम बता दें 2014 में इन 93 सीटों पर 65.1% मतदान हुआ था और 2019 में 66.9% मतदान हुआ था, यानी 14 के मुकाबले 19 में मतदान फीसद करीब करीब 1.5 से 1.25% बढ़ गया था। अब देखना है कि इस बार कितने फीसदी वोट कल तीसरे चरण के मतदान में पड़ते हैं। आपको बता दें कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, प्रत्याशियों को भी दिक्कत हो रही है कैंपेनिंग करने में, जनता को भी दिक्कत हो रही है सभाओं तक आने में। ऐसे में तेज धूप में, लू में, गर्मी में कैसे जनता पहुंचेगी मतदान केंद्रों पर, ये बड़ी चुनौती पार्टियों के लिए भी होने वाली है और चुनाव आयोग के लिए भी होने वाली है। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि मतदान केंद्रों पर गर्मी का असर कम से कम हो उसके इंतजाम करने की तमाम निर्देश स्थानीय जो चुनाव आयुक्त हैं उनको दिए गए हैं। तो उदासीनता छोड़िएगा, मतदान करने गर्मी से बचते हुए जरूर निकलिएगा, हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं। पहले दो दौर का मतदान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था वहां पर इस बार 66.1% मतदान देखने को हुआ, जबकि 2019 में 70% मतदान हुआ था, यानी करीब करीब 4% मतदान पहले चरण में कम पड़ा। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को जिन 89 सीटों पर वोट डाले गए वहां भी इस बार मतदान घटा है। 2019 में 70.1% के मुकाबले इन सीटों पर 66.7% वोट डाले गए।
तो अभी आप देख रहे थे मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी को, जो तीसरे चरण का अलग अलग नजरिए से लेखा जोखा बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए चार चरणों में मतदान हो रहा है। पहले दो दौर में वहां 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और कल वहां 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से गुना से माधवराव सिंधिया और विदिशा से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीटें सबसे बड़ी वीआईपी सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कल के मतदान की तैयारियों पर देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश का ये तीसरा चरण है लोकसभा चुनाव का, जो बहुत मामलों में बहुत रोचक है, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक राजा और एक महाराजा इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें शिवराज सिंह चौहान की, जो विदिशा में 20 साल के बाद उतरे हैं, और दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ में लगभग 33 सालों बाद उतरे हैं। ग्वालियर के महाराज भी हैं जो गुना से खड़े हैं, पिछली दफ़ा चुनाव में हार गए थे, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और इस दफ़े बीजेपी से खड़े हैं, और जो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे वो चुनाव मैदान में नहीं है। खास करके जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, अगर मुरैना की बात करें तो वहाँ कांग्रेस को लीड मिली थी, यानी कांग्रेस के पास 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास 3। ग्वालियर में 4-4 का आंकड़ा है और लगभग बाकी जगहों पर बीजेपी को ही लीड है। सागर में तो जो इकलौती कांग्रेस की विधायक थीं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर ये चरण बहुत दिलचस्प होने वाला है। कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस तगड़ी चुनौती देने के, क्योंकि पिछली दफ़ा जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में, उसमें स्कोर 28-1 था। तो कांग्रेस की भरसक कोशिश है कि वो इस लीड को पाटे, और बीजेपी की कोशिश, बार बार वो कहते रहे कि 29 कमल खिलाना चाहते हैं, यानी 29 में से 29 सीटें वो जीतना चाहते हैं, तो इस लिहाज से ये चरण भी काफी दिलचस्प है। पिछले दो चरणों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है, कई सारी वजहें बताई गई, गर्मी जो अभी भी रहेगी, लेकिन शादी ब्याह का सीजन जो अब नहीं है, तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उनको उम्मीद है कि बड़ी तादाद में मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। लेकिन जो गर्मी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं सबके मन में आशंका है कि ऐसा ना हो कि मतदान का प्रतिशत एक बार फिर पिछले दो चरणों की तरह ही रहे। हालांकि चुनाव आयोग की कोशिश है, भरसक कोशिश है कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, तो इस पूरे चरण में चाहे विदिशा हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे गुना हो और बाकी ग्वालियर चंबल की सीटें भी, बुंदेलखंड की एक सीट है, तो कुल मिलाकर ये चरण बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है राजनीतिक दलों के लिहाज से भी और मतदाताओं के लिहाज से भी।
बात यूपी की करेंगे। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सभी 7 दौर में मतदान होगा। तीसरे दौर में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें मैनपुरी से डिंपल यादव की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उधर आगरा में भी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर फिर से चुनाव जीतने का दारोमदार है। समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद कदम उनके सामने मुख्य चुनौती हैं। आगरा में मतदान की तैयारियों पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर यहां पर की गई हैं और करीब 20,000 जो पोलिंग स्टेशन लगाए गए हैं उन सभी पोलिंग स्टेशन पर जो मतदान कर्मी हैं उनको वहां डिप्लॉय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी में दोनों को मिलाकर करीब 38 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं। पिछली बार जब यहाँ मतदान हुआ था 2019 में तो आगरा में जो वोटिंग परसेंटेज था यानी मतदाताओं की भागीदारी का जो प्रतिशत था वो सिर्फ 59% था। पिछले कुछ महीनों में कोशिश की गई है चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको उत्साहित किया जाए कि वो मतदान में भाग लें और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस कोशिश का कितने कारगर नतीजा जो है वो कल सामने आता है। हीट वेव की किसी भी संभावना से निपटने के लिए विशेष तौर पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, चाहे वो ठंडा पीने का पानी हो, छायादार इलाका हो, टेंट की व्यवस्था हो, जहाँ कुछ भी ज़रूरी है वो तैयारियाँ की गई हैं। सैकड़ों पिंक बूथ्स लगाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ महिला जो अधिकारी हैं मतदान कर्मी हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए जो विशेष सुविधाएं हैं चाहे वो व्हील चेयर की सुविधा हो या फिर रैंप की सुविधा हो वो सभी हर पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर तैनात किया गया। और महत्वपूर्ण ये है कि करीब 1500 से 2000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं पैरामेडिक्स हैं उनको भी स्टैंड बाय और अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि अगर कल हीट वेव की संभावना बनती है, तापमान औसत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और कहीं भी अगर आपात ज़रूरत होती है तो जो पैरामेडिक्स हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको जल्दी से जल्दी वहां तैनात किया जा सके। करीब 320 पोलिंग स्टेशंस हैं आगरा और फतेहपुर सीकरी में जिनको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है और इन दोनों संसदीय क्षेत्र में कुल 20,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
उधर बिहार में तीसरे दौर के मतदान में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बिहार में सीमांचल की सीट मधेपुरा में जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव का मुकाबला आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप से होगा। मधेपुरा में कैसी चुनावी तैयारियां हैं उस पर देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ये रिपोर्ट।
कल तीसरे चरण का चुनाव होगा और जैसे बाकी जगहों पे है बिहार में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा जिसमें सुपौल, मधेपुरा, अररिया, झंझारपुर और खगड़िया में होगा। हम अभी मौजूद हैं मधेपुरा में, आपको दिखाएं ये जिला नियंत्रण कक्ष मधेपुरा का, यहाँ की तैयारी क्या है। हालांकि कल जो है वो आपको हम जो बूथ हैं वहाँ से दिखाएंगे कि लोग कैसे मतदान कर रहे हैं, लेकिन आज रात की तैयारी क्योंकि कल यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तीसरे चरण का चुनाव होगा और पूरा का पूरा जो जिला प्रशासन है वो लगा हुआ है तैयारी में। ये एक कंट्रोल रूम है, ये जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम है जिसे आप मेन कंट्रोल रूम बोल सकते हैं और ये सारी जो शिकायतें हैं वो यहीं पे आएंगी और ये जो महिलाएं जो बैठी हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, इनकी ट्रेनिंग काफ़ी दिनों से इस पे चल रही है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है इसकी पूरी तैयारी की गई है। अभी रात के बहुत लेट हो रहा है उसके बाद भी लोग बैठे हुए हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा और कल यहीं से पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे जिले की और पूरे मधेपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का।
जब शिकायतें मुझे मिलेंगी तो मैं किसी के ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई की गई वो भी इंटर किया जाएगा और उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ वो भी इंश्योर किया जाएगा और उसको इन राइटिंग किया जाएगा और कम्युनिकेशन प्लान हम लोगों ने रख रखा है यहाँ पे।
ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे ये मेन कंट्रोल रूम है, इसके अलावा भी दो अलग टियर है कंट्रोल रूम का और जो सारी शिकायतें आएंगी उसका निवारण उस पे जो एक्शन लेना है उसका निर्णय यहीं से किया जाएगा। सो कल का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, न केवल हमारे लिए न केवल हमारे दर्शकों के लिए बल्कि इन लोगों के लिए भी। काफ़ी मेहनत की है इन लोगों ने, काफ़ी ट्रेनिंग ली है इस चीज़ के लिए और कल जो है इसे आप फुल्ली फंक्शनल देखेंगे मधेपुरा से।
जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के सुरनकोट में शनिवार को वायुसेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले की जांच से यह साफ हो गया है कि यह हमला आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सहयोगी गुट PAFF ने करवाया है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बाधा डालने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी कैंपों को सक्रिय किया गया है। इस बीच हमले में शामिल दो आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और सुराग देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है।
सूरनकोट के इलाके में तलाशी अभियान जारी है, फौज घर घर गली गली जाकर तलाशी ले रही है। माना जा रहा है कि जिन आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के जवानों पर हमला किया वो अभी भी इन्हीं जंगलों में कहीं छुपे हैं। इस बीच दो आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया और 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई। 18 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। सीमावर्ती पुंछ जिले के साथ साथ निकटवर्ती रजौरी में पिछले दो वर्ष में कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। इलाके में बीते दो सालों में 2 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कश्मीर और पुलवामा का जिक्र किया था। इस इलाके में मतदान 7 मई को होना था लेकिन मौसम के चलते अब यहां पर 25 मई को वोट डलेंगे।
आपको लग रहा है कि फाइनल होगा यार?
फाइनल होगा जनाब, और जो ही अमरनाथ यात्रा हो जाएगी मैं आपको लिख के देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन होगा। अरे आ जाओ, आज देख नहीं रहे हो? हम तो सालों से तैयार हैं, वो तैयार नहीं, उनको और ABC नहीं मिल रहे हैं।
जयराम रमेश कह रहे हैं कि पुंछ अटैक पे राजनीति हो रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है पुंछ अटैक पे,
कोई राजनीति है क्या? राजनीति का बाप नहीं कर रहे हैं?
जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं उसके मुताबिक जो हमलावर थे वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन था और माना जा रहा है कि वो घने जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं, जिसके चलते एरिया में अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है और जो एजेंसीज हैं उनका कहना है कि अगले 20 दिन तक वो सतर्क रहेंगी क्योंकि माना जा रहा है कि इस तरह के और हमले हो सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा सहयोगी पूजा आर्य के साथ मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।